ओम नमस्ते जी। 323वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने विस्तृत टीका लिखी हुई है। हम 24वें अध्याय पंच महायज्ञ विषय आपको स्वाध्याय करा रहे हैं। क्रम चल रहा है पितृयज्ञ का, उसमें पितरों के प्रमाण दिए जा रहे थे और उन प्रवचनों की संस्कृत व्याख्या के बाद अब आर्य भाषा की व्याख्या चल रही है, आगे हम सुना रहे हैं। और सदा ऐसी प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, आपके अनुग्रह से सौम्यासह जो शांत स्वभाव और सबको सुख देने वाले विद्वान लोग अग्निश्वात्ताह अग्नि नाम परमेश्वर और रूप गुण वाले भौतिक अग्नि की अलग अलग करने वाली विद्युत रूप विद्या को यथावत जानने वाले हैं, वे इस विद्या और सेवा यज्ञ में स्वधया मदंतः अपनी शिक्षा विद्या के दान और प्रकाश से अत्यंत हर्षित होके अवंत्वस्मान हमारी रक्षा करें, तथा उन विद्यार्थियों और सेवकों के लिए भी ईश्वराज्ञा है कि जब जब वे आवे तब तब उनको उत्थान नमस्कार और प्रिय वचन आदि से संतुष्ट रखें, तथा फिर वे लोग भी अपने सत्य भाषण से निर्वैरता और अनुग्रह आदि सद्गुणों से युक्त होकर अन्य मनुष्यों को उसी मार्ग में चलावें और आप भी दृढ़ता के साथ उसी में चलें। ऐसे सब लोग छल और लोभादि रहित होकर परोपकार के अर्थ अपना सत्य व्यवहार रखें। पतिभिर देव या नहीं, उक्त भेद से विद्वानों के दो मार्ग होते हैं, एक देवयान और दूसरा पितृयान। अर्थात जो विद्या मार्ग है वह देवयान और जो कर्मोपासना मार्ग है वह पितृयान कहता है। सब लोग इन दोनों प्रकार के पुरुषार्थ को सदा करते रहें। अब इससे आगे हम स्वामी विद्यानंद जी की लिखी हुई पितृयज्ञ पर टिप्पणी आपको सुना रहे हैं। गृहस्थ के कर्तव्यों का निर्देश करते हुए मनुस्मृति में लिखा है, देवान ऋषीन मनुष्यांश्च पितृन गृह्याश्च देवताः पूजयित्वा ततः पश्चात् गृहस्थः शेष भुग् भवेत्। मनुस्मृति 3:116। अर्थात गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह देव ऋषि मनुष्य पितर आदि सबको सत्कृत करने के पश्चात शेष अन्न का भोजन करे, क्योंकि अधम स केवलम भुंक्ते यह पचत्यात्म कारणात् यज्ञ शिष्टाशिन येतत् सतामन्नम विधीयते। मनुस्मृति 3:118। जो केवल अपने लिए पकाता है वह निरापाप खाता है, जो यज्ञादि से शेष भोजन है वही सज्जनों का भोजन है। मनुजी का यह वचन मानो वेद के केवलाघो भवति केवलादि ऋग्वेद 10:117-6 की व्याख्या है। सत्कार के योग्य मनुष्यों को यहाँ मुख्यतः तीन कोटियों में रखा गया है, देव ऋषि और पितर। देव तर्पण के संदर्भ में ऋषि दयानंद ने सत्यात प्रकाश में इस प्रकार लिखा, ब्रह्मादयो देवास्तृप्यंताम ब्रह्मादि देव पत्न्यस्तृप्यंताम ब्रह्मादि देव सुतास्तृप्यंताम ब्रह्मादि देवगणास्तृप्यंताम। अश्वलायन गृह सूत्र 6:4 पारस्कर परिशिष्ट कंडिका 3 इति देव तर्पणम। विद्वान सो ही देवाः, यह शतपथ ब्राह्मण 3:7-3:10 का वचन है। जो विद्वान हैं उन्हीं को देव कहते हैं, जो सांगो पांग चारों वेदों के जानने वाले हों उन्हीं का नाम ब्रह्मा, और जो उनसे न्यून पढ़े हों उनका भी नाम देव अर्थात विद्वान है। उनके सदृश विदुषी स्त्री ब्रह्माणी देवी और उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके सदृश उनके गण अर्थात सेवक हों उनकी सेवा करना है, उसका नाम श्राद्ध और तर्पण है। भिन्न भिन्न कालों में देवादि शब्दों की भिन्न भिन्न परिभाषाएं की जाती रही हैं, किंतु सबका निष्कर्ष एक सा ही है। यहां हम बोधायन गृह सूत्र 2:9 में उपलब्ध परिभाषाएं दे रहे हैं। उपनीत मात्रो व्रतानुचारी वेदानाम किंचिदधीत्य ब्राह्मणी एकाम शाखामधीत्य श्रोत्रियः अंगाध्यायनुचानः कल्पाध्यायी ऋषिकल्प सूत्र प्रवचनाध्यायी भ्रूणः चतुर्वेदाद ऋषिः अतः ऊर्ध्वं देवः। अर्थात जिसका केवल यज्ञोपवीत हुआ हो ऐसा ब्रह्मचर्य व्रतधारी वेदों का कुछ भाग पढ़ने से ब्राह्मण, एक संपूर्ण शाखा को पढ़ने से श्रोत्रिय, अंगों को पढ़ने वाला अनुचान, कल्प का पढ़ने वाला ऋषिकल्प, सूत्रों और भाष्यों को पढ़ने वाला भ्रूण, चारों वेदों को पढ़ने से ऋषि, उससे आगे देव। इससे प्रतीत होता है कि परम विद्वान की देव संज्ञा है। ऋषि दयानंद ने यजुर्वेद भाष्य 7:46 में वेदेश्वरवित को ब्राह्मण बताया है। मनुस्मृति के अनुसार वेदाभ्यासात ततो विप्रो ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः, तथा पाणिनि सूत्र तदधीते तद्वेद 4:59 के अनुसार वेद के ज्ञाता को ब्राह्मण कहते हैं। दोनों को मिलाकर ऋषि दयानंद द्वारा निर्दिष्ट अर्थ वेदेश्वरवित निष्पन्न होता है। बृहदारण्यक उपनिषद 3:1:1 में लिखा, तस्य ह जनकस्य वेदेहस्य विजिज्ञासा बभूव कह स्विदेशाम ब्राह्मणानाम अनुचानतम इति, अतिशयेन अनुचानोनुचानतमः अतिशयशायेन तमविष्टनौ, पाणिनीय 8:55। विदेह जनक ने जानना चाहा कि सभा में उपस्थित ब्राह्मणों में अनुचानतम कौन है। यहाँ अतिशय अनुचान को अनुचानतम अर्थात सबसे बड़ा विद्वान कहा गया। पंडित शिवशंकर काव्यतीर्थ के अनुसार आचार्य मुखान निस्रितानी वचनानि यो अनुब्रवीतीति पश्चात ब्रवीति सो अनुचानः, वेदस्यानुवचनं कृतवान इत्यर्थः उपेयिवानु नाश्वान अनुचानश्च, पाणिनि 8:3:2:109। यद्यपि सर्व एव ब्राह्मणा अनुचानाः सन्ति तथापि तारतम्यं भवत्येव, इसके विपरीत जो वेदार्थ का स्वयं साक्षात्कार करते हैं वे ऋषि कहते हैं। साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवुः, निरुक्त 1:20। अथवा किसी अभाव को दूर करने के कारण विप्र लोग, अथवा किसी अनुद्घाटित सत्य को अपनी दूरदृष्टि से देख लेने के कारण विचक्षण नृचक्षस लोग ही ऋषि बन पाते हैं। ऋषि बनाने में दूसरों का कल्याण करने की इच्छा तथा दूसरों को सुख पहुंचाने के कार्य इनके सहायक होते हैं। संक्षेप में जो मानव मात्र का हित चाहता है और करता है वह ऋषि कहता है। ऋषि ही स यो मनुर्हितो विप्रस्य यावत् सखः, ऋग्वेद 10:26:5। भद्रमिच्छन्त ऋषयः, अथर्ववेद 19:41:1। ऋषीन स्व तपस्वतो यम तपोजान, ऋग्वेद 30:154:5। तमेव ऋषिम तमो ब्राह्मण आहुः यः प्रथमो दक्षिणया रराध, ऋग्वेद 10:107:6। जो जाना है उसे दूसरों को जनाना ऋषि कर्म है। यो वै ज्ञातो अनुचानः स ऋषिरार्षेयः, अत्रैव शतपथ ब्राह्मण व्याख्याने शतपथ 4:3:4:19। आर्षेयम् इतश्चानीयः, पाणिनि 4:1:102। इति ढक कितः, पाणिनि 8:6:1:165। इत्यन्तो दात्तत्वम्, अध्यापन मात्र ऋषि बनने का प्रयोजक नहीं, अध्यापक मात्र को आर्षेय नहीं कहा जा सकता। मनुस्मृति में बिना वृत्ति की आकांक्षा के पढ़ाने वाले को आचार्य तथा वृत्ति लेकर पढ़ाने वाले की उपाध्याय संज्ञा है। यद्यपि पढ़ाना सामान्य कर्म है और हर पढ़ाने वाला अध्यापक टीचर कहलाता है, तथापि उत्तरोत्तर योग्यता और क्षमता के आधार पर वर्तमान में तारतम्य से प्राध्यापक यानी लेक्चरर, उपाचार्य यानी रीडर तथा आचार्य यानी प्रोफेसर आदि संज्ञाएं नियत हैं। जिस किसी प्रकार प्रत्येक पढ़ाने वाला प्रोफेसर नहीं कहलाता, उसी प्रकार ऋषि कर्म यानी अध्यापन में प्रवृत्त प्रत्येक व्यक्ति आर्षेय नहीं कहलाता। उपर्युक्त लक्षणों से युक्त ऋषि संज्ञक मनुष्य जब अपने ज्ञान का दूसरों में संक्रमण करता है तभी वह आर्षेय कहलाता है। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। ओम।